اس مرغی کو تو چنا بیچنے والے کا ذکر آیا چنے کا بھی نظر رکھتے ہیں
چنے رات میں جیسے بندر ہوتے ہیں تو بندروں کو بھول بھرا ڈالو تو اٹھانے کی اور رتن ڈالو تو نہیں اٹھائیں گے تو دنیا میں بھی جو چنے ہیں چٹپٹے ہوتے ہیں مسالے دار چیز ہوتی ہے نا چٹپٹی کٹ کے سنائی جاتی ہے تو اس کو زیادہ دھیان سے سنتے ہیں سادھا سادھا سیدھی سیدھی کوئی چیز دے دو تو نہیں سنے گا مارکیٹ میں بھی کوئی مال ہوتا ہے اچھی پیکنگ کر کے اچھے طریقے سے دو تو اس میں زیادہ پیسے دے دیں گے تو جان بھی سادھا طریقے سے دیتے ہیں تو کوئی اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں
BCD 461 में बाबा ने बोला है कि एक होते हैं नागे बाबा, वो अपन को बहुत ऊंच समझते हैं। प्रयागराज में जब स्नान करने जाते हैं तो बहुत बड़ा मेला लगता है, तो पहले पहले स्नान उनका होना चाहिए। नागा बाबा का इसका राज सुनिए।
रुद्रमाला नागा बाबा की है, साकार होगी। जैन मंदिर होते हैं दो तरह के, एक नंगे दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर होते हैं नंगे रूनी दिखाए जाते हैं मंदिरों में, और श्वेतांबर होते हैं उसे कपड़ा पहने हुए दिखाए जाते हैं, उनको नीचे दिखाते हैं श्वेतांबर मंदिर वालों को, और दिगंबरों को ऊंचा दिखाते हैं। ऊंचा किस लिए दिखाते हैं? क्योंकि उनकी लयाकारी ऊंची स्टेज है। इसलिए जो ऊंचे हैं उनको पहले स्नान, और जो नीचे स्टेज वाले हैं उनका बाद में स्नान होता है। कहाँ की यादगार?
संगम
युग में है। जो बीके वाले हैं वो एडवांस ज्ञान बाद में उठाएंगे, उठाएंगे तो सही, वो बाद में स्नान करेंगे। और जो रुद्रमाला वाले हैं निराकारी स्टेज वाले हैं वो पहले स्नान करते हैं। कुंभ मेले की यादगार है।
वहाँ एक प्रश्न है, भक्तिवाद में कृष्ण कथाओं में सत्यभामा और रुक्मणी यही सब रानियों का गायन है,
और रानियों का गायन,
बट रानियों का गायन है, राधा का जिक्र तो प्रेसी के रूप में आता है,
महारानी है।
इसका क्या मतलब?
वो पट रानियां है, पट में जाके गिरती है, दूसरे दूसरे धर्मों से कनेक्टेड हो जाती है, इसलिए उनकी इतनी पूजा नहीं है संघ में, साथ में तो पूरा साथ नहीं दे पाती, बीच में उल्टी हो जाती है, कोई न कोई धर्म वालों के प्रभाव में आ जाती है। और राधा, राधा सच्ची प्रेयसी है, वो कोई के प्रभाव में नहीं आती, तो किसी की प्रजा नहीं बनती, तो आज से अंत तक साथ ही सहयोगी बन करके रहती है।
प्रदर्शनी तो बीके वाले लगाते हैं ना, आप एडवांस में प्रदर्शनी लगाना चाहिए।
आप चैतन्य चित्र की प्रदर्शनी लगाओ, आपकी बुद्धि में तो चैतन्य चित्र बैठे हुए हैं। ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है? थोड़े दिनों बाद अष्टदेव कौन है, वो भी बुद्धि में बैठ जाए। आप चैतन्य चित्र की प्रदर्शनी सुनाओ और उनका प्रैक्टिकल प्रूफ दो कि ये नरसिंह नारायण कैसे बनते, पूरी हिस्ट्री बताओ।
बाबा, तो एक कन्या आएगी कि मैं समझती है, वही सेंटर में रहती है, वहाँ से मिलना चाहती है, और आपको याद करती है बाबा, भट्टी नहीं कर कैसे करूँगी मैं यहाँ से भट्टी नहीं होगी।
पूछना बकरी है या शेर नहीं हो?
अब करने का हिम्मत रखो, शरीर बनकर गलती करने जाओ।
हैं अभी तो सरकार ने भी इतना स्वतंत्रता दी है कन्याओं को, 18 साल की कन्याओं को कोई जाने आने से कहीं भी रोक टोक नहीं कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता सभी को है।
मैं बाबा से मिल पाऊंगी कि नहीं, मैं पहले भर्ती करूँ, तब तो बाबा को स्वयं मिलेंगे।
उसे कहना बाबा ने बोला है त्रिमूर्ति में एक है शेर, एक है बकरी, एक है घोड़ा, तुम कौन सी कुल की हो? विष्णु है बकरी, शंकर है शेर और ब्रह्मा है घोड़ा। ब्रह्मा है मनरूपी घोड़ा, उसको लगाम में लगा के रखेंगे तो ठीक चाल चलेगा। बकरी को फॉलो करेंगे तो बकरी बन जाएंगे, फिर हम कैसे कैसे मिले?
बाबा जैसे भक्ति सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो में आती है, वैसे ही ज्ञान भी चार अवस्थाओं से प्रसार होती है, वो समझाइए बाबा।
ज्ञान यज्ञ के आदि में जो निकले थे उस समय का उमंग उत्साह उनमें आज देखा जाता है? नहीं देखा जाता है। बेसिक वालों में भी नहीं देखा जाता है। ऐसे ही एडवांस में जब आप शुरू शुरुआत में एडवांस में आए थे उस समय का उमंग उत्साह और आज के पुरुषार्थ में क्या अंतर है?
पहले
सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान, सतो सामान्य, फिर रजो। भगवान के बनते हैं तो नशा बहुत ऊंचा चढ़ जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ज्ञान भी सुनते जाते हैं, सुनते सुनते अब अज्ञान भी करते जाते हैं, सौ गुना बोझ भी चढ़ता जाता है, तो आत्मा नीचे गिरती जाती है।
बाबा काली तुलसी सर जंगल में ही तो रहती है।
काली तुलसी ने संगम युग में ऐसा पार्ट बजाया होगा कि शुरुआत में सहयोग दिया और फिर उसके बाद भगवान के मंदिर में से निकल करके बाहर चली गई होगी कांटों के जंगल में, कांटों के बीच रहती होगी, वहीं फलती फूलती होगी। इसलिए उसको कांटों के जंगल में दिखाते हैं और जो हरी तुलसी है, हरी तुलसी, उसको अंदर दिखाते हैं।
बाबा द्वापर में जो राजाएं निकले थे जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की, अब ऐसा समय आने वाला है जब पतित राजाएं छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, यानी रानियां जो ऐसे निकलेंगी जो राजाओं को छोड़कर भागेंगी, तो अभी होगा बाबा ये? यानी नहीं, यानी जो एडवांस में जो है वो सब, यानी जो हमारा के हैं वो सब राजाएं,
चाहे एडवांस में हो और चाहे बेसिक में हो, जो भी पुरुषार्थी भाई लोग हैं उनके अंडर में ही तो है सब। अभी अंदर में है या बाहर है? अभी कंट्रोल में है, भाइयों के कंट्रोल में है, बहनें हैं, माता हैं, या कंट्रोल से बाहर है?
कंट्रोल में,
कंट्रोल के अंदर है। भगवान को तो जानती ही नहीं, जब भगवान को जानती नहीं भाइयों के अंदर भी कंट्रोल चल रही है, लेकिन जब उनको ज्ञान मिल जाएगा असली तो क्या करेंगे? हाँ, छोड़ के भागेंगे और राजा है उनको राजाओं की परवाह नहीं करेंगे। धरो अपनी धर्मशाला, हम चले वतन की ओर।
बाबा ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची, फिर वो अच्छा नहीं लगा तो बिगाड़ दिया, फिर दूसरी सृष्टि रची वो भी अच्छा नहीं है फिर बिगाड़ दिया, फिर तीसरी सृष्टि रची वो भी अच्छा नहीं है, और चौथा
सृष्टि पसंद आई,
तो कौन सा ये चारों, मतलब कौन पहले प्रेम कांता है
पहले? यज्ञ की याद में नहीं रची थी?
हाँ हाँ,
वो यज्ञ की याद में रची थी, फिर उसमें असुर घुस पड़े, ब्रह्मा की गोदी में पलने लगे, तो नहीं पसंद आई ना, फिर दोबारा शुरू होता है एडवांस ज्ञान। एडवांस ज्ञान में भी सृष्टि रची जाती है, तो जो जो युगों की जो वर्ण है, सत्युग का देवता वर्ण, त्रेता का क्षत्रिय वर्ण, द्वापर का वैश्य वर्ण, कलयुग के शूद्र वर्ण, इन चारों की शूटिंग चार बार होती है और चारों प्रकार की शूटिंग में वो प्रत्यक्षता होती है नई सृष्टि रचने की। पसंद नहीं आती है, तो तीन बार पसंद नहीं आई, चौथी में हम पूरा हो गया। चौथी बार रची जाती है, वैसे उन्हें भी निकल आती है, हम संपन्न हो जाता है।
अभ्यर्थवाणी चला कहा हुआ है, रोज ठीक सा हुआ है, जिसको जो देना चाहे तो दे सकते हैं, सब रोज ठीक सा हुआ है और जिसे से ठीक सा जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, सब आए
ऐसा कुछ नहीं था जो लेना चाहते हैं।
ये कहा कि दो तीन सीट्स फिक्स हुई है अष्टदेवों में, उसके बाद अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, माने छह अभी और रह गए हैं प्रत्यक्ष होने के लिए। उन नंबरों में अगर कोई आना चाहे, लेना चाहे तो ले सकता है। हाँ जी हाँ जी, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी भी पुरुषार्थ करके कोई नंबर हर्षदेवों में ले सकता है और धर्मराज की सजाओं से बच सकता है।
बाबा कुंभ मेला 12 साल में क्यों?
क्योंकि यहाँ यज्ञ में भी हर 12वें साल आकर के कोई नया उपक्रम शुरू हो जाता है, जैसे संक्षेत्र में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, फिर 90 में फिर त्रेतायुग की शूटिंग शुरू हो गई, वो त्रेतायुग की शूटिंग समाप्त हुई और द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई, माने ब्रह्मा की सोल जो 100 साल आयु पूरी करती है दादा लेखराज वाली, वो 100 साल उनके मृत्युलोक में पूरे होते हैं और अमर लोक में उनका पार्ट शुरू हो जाता है। पीपल के पत्ते पर कृष्ण का छोटा सा चित्र बनाते हैं और गर्भ महल में बड़े आराम से उसे दिखाते हैं, तो वो आत्मा गर्भ महल में प्रवेश कर जाती है नई दुनिया में। तो 12 साल का ये स्वरूप दिखाया गया है, उसकी यादगार जगन्नाथ मंदिर में दिखाते हैं कि 12 वर्ष की लकड़ी होती है वो नदी में पड़ी रहती है, फिर 12 वर्ष बाद जब पक जाती है अच्छी तरह तब उसको निकाल करके उसके नाक आंख कान बना देते हैं, उसी मंदिर में उसका भी कर देते हैं।
बाबा जैसे धर्म के काय हैं तो वो अभी संगम युग में मतलब एडवांस में भी नहीं है और बेसिक में भी नहीं, वो मतलब लास्ट में बात मतलब साक्षात्कार के बेस पे
वो नहीं है, लेकिन उनके आधारभूत और बीज रूप आत्माएं तो हैं,
लेकिन
तो उन्हीं की यादगार में बनता है, क्योंकि जो ऊपर से आने वाली आत्मा वो तो देखने में नहीं आती, जिसमें प्रवेश करती है वो आधारभूत तो हमारे यज्ञ में है
और बीज रूप भी है,
विद्रूप भी हमारे यज्ञ में है, इसलिए काम तो चल रहा है।
धर्म गोताओं में ज्ञान कहाँ से आता है?
ये जो आत्माएं आधारभूत और विद्रूप आत्माएं हैं, जब विद्रूप आत्माएं जिस धर्म की विद्रूप आत्माएं होंगी उस धर्म के आधारभूतों में मिल जाएंगी, और वो आधारभूत जो है वो उन ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं में प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे, तो उनको भी ज्ञान मिल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वहाँ उन्होंने प्रवेश किया, यहाँ
ये प्रवेश
उन्होंने करें।
कृष्ण का जन्म कंस की जेल में होता है, कंस की जेल से जन्म लेने के बाद यमुना नदी से उसे क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ विकारी सर्प कार्य नाग रहता है, इसका मतलब सुन रही।
यमुना नदी जो है काली दिखाई जाती है, माने यमुना का जो पार्ट है काला पार्ट है, काला माने व्यभिचारी, उसमें कृष्ण का पिता क्रॉस कराता है नदी, जब जेल से प्रत्यक्षता होती है तो उनका बाप उनको नदी पार कराता है, टोकरी में लग के रख के ले जाता है, तो ज्ञान की टोकरी है, पिता कोई दूसरा नहीं है, राम वाली आत्मा ही पिता है, जिसे वसुदेव कहा गया है, वसु माना धन संपत्ति, देव माना देने वाला, ज्ञान की टोकरी में रख करके उसे नदी पार कराता है, और फिर वो कालिया नाग जो उसमें रहता है यमुना नदी में, यमुना नदी में जो कालिया नाग रहता है कोई दूसरे थोड़े ही है, वो कामी क्रोधी लोग में ये अहंकारी वो उसके ऊपर आधिपत्य जमा लेते हैं। उसमें कृष्ण को दिखाते हैं कि कालिया नाग वो नाग के ऊपर वो आराम से डांस करता हुआ प्रत्यक्षता होता है, प्रत्यक्ष होता है। डांस जो है वो प्रत्यक्षता की निशानी है कि पांच विकारों को जीत की आत्मा वसीभूत कर लेती है, लगाम लगा देती है।
बाबा कंस की बात आई तो एक दिमाग में ऐसे आई कि बताया कि कृष्ण ही कंस, बाद में कंस बनता है, राम रावण बनता है, तो ये मथुरा में जो कंस किला है वो किसकी याद का, वो क्या है?
मथुरा क्या है?
कंस किला है एक,
कंस किला।
हाँ जी, तो वो क्या है
कंस किला क्या है? वहाँ तो कृष्ण का जन्म ही दिखाया गया है।
कंस किला एक अलग से बना?
नहीं नहीं, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है वहाँ मुसलमान की मुसलमानों की मस्जिद भी बनी हुई है।
कंस किला 10 साल रहा।
कंस किला वहाँ पर है तो वो किस बात की?
वो मुसलमानों की जो मस्जिद बनी हुई है वो किस बात की यादगार है? कि जहाँ कृष्ण का जन्म होता है वहाँ मुसलमानों का राज्य भी होता है, वहीं से प्रत्यक्ष होता है कृष्ण।
वहीं पर उसका मतलब कृष्ण के जन्म का स्थान भी है, उसके नीचे चैताने में जाके
कृष्ण जन्माष्टमी दिखाती है।
बाबा कृष्ण से पहले सात बच्चे कौन
थे? सात नारायण, सात नारायण है वो कृष्ण। पहले सात नारायण जो है वो ब्रह्म कुमारी आश्रम में सरेंडर हो जाते हैं और उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है कंस। एक बच्चा बच जाता है, उसकी कुसावे से बाहर निकल आता है, वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। किसके कंट्रोल से? कंस के कंट्रोल से। तो वो उस विकारों की जेल में फंसता नहीं है और बाकी सातों नारायण अभी भी फंसे हुए हैं।
माला जब बनाई जाती है तो धागा होता है, तो धागा किस चीज का हुआ? इसमें एक तो याद
धागे दो होते हैं, एक धागे से नहीं बनती माला, दो धागे होते हैं, एक होता है स्नेह का धागा और एक होता है याद का धागा। स्नेह और याद, नहीं नहीं, एक होता है स्नेह, याद और स्नेह तो एक ही बात होगी, स्नेह का धागा और दूसरा ज्ञान का धागा। हाँ, दोनों धागे मिलकर के माला तैयार होती है।
बाबा ये एडवांस में दोनों किस्म के बच्चे हैं, जैसे जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और समय आने पर कारण या कारण है वो शरीर छोड़ देते हैं। उनका एम है कंचन काया बनाना, शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म लेंगे, ठीक है, एडवांस में लेंगे कंचन काया बनाना, उनका एम है तो कंचन काया ही बनाएंगे, लेकिन वो क्या देवी देवता के माँ बाप बन पाएंगे?
क्या नहीं बन
पाएंगे? क्योंकि सब जो कुछ लोग 30 में जाके जन्म लेते हैं तो 6 साल बाकी बचे,
आगे आगे चल के बनते रहेंगे।
आगे
एक डिस्कशन है बाबा, हमने बताया कि सतयुग में देवताओं का ना बचपना होता है ना वृद्धावस्था होता है,
तो और भी आसान।
और तो फिर लेकिन राम और कृष्ण का तो बचपना,
वो तो भक्ति मार्ग की संगम की बात है,
तो ये संगम युग की बात है।
संगम युग की बात है तो शास्त्रों में दिखाई गई है राम कृष्ण के लिए, लेकिन सतयुग उत्तरीयता की तो कोई हिस्ट्री नहीं है।
हिस्ट्री बाबा, जब सतयुग में कोई मरता नहीं तो
खत्म कर सकते? मरना उसको कहा जाता है जो जबरदस्ती दिल कोरे आते हैं, मरना नहीं चाहता तो मारा जाता है। वहाँ कोई स्वेच्छा से इच्छा मृत्यु होती है, जब चाहते हैं जैसे सर्प आसानी से कैचुल त्याग देता है वैसे ही वहाँ अपना शरीर त्याग देते हैं और नया शरीर ले लेते हैं, उसको मरना नहीं कहा जाता है। दुनिया में आजकल मरते हैं कितने हिलकोरे आते हैं, हिचकी आती हैं, जैसे मरना नहीं चाहता है फिर भी मर रहा है, तो उसको मरना कहा जाता है। मरना कौन चाहता है? मरना तो कोई भी नहीं चाहता। तो बाप तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं। यहाँ जो जीते जी मरने की कला सीख लेंगे वो 21 जन्म तक जीते जी अपना शरीर स्वेच्छा से छोड़ते रहे।
सर बाबा क्यों छोड़ेंगे?
छोड़े पुराने शरीर का क्या करना है? अच्छे युग में क्यों छोड़े? अच्छे युग में भी तो शरीर तो चार अवस्थाओं से गुजरेगा ना। सात्विक स्टेज से सातु सामान्य रजो और तमो सत्युग में भी अवस्था तो बनेगी ना। शरीर की अवस्थाएं होंगी भी नहीं चार पांच, लेकिन वो अवस्थाएं दिखाई नहीं पड़ेंगी। ये पता नहीं चलेगा कि ये बचपन है। जैसे गाय का बच्चा पैदा होता है, पैदा हुआ और उछलने लगा दौड़ने लगा। मनुष्य का बच्चे क्यों दो तीन साल पालने में पड़ा रहता है?
अब एक भी भीषण तो गाय एक तो या तो अभी संगम युग में तो बहुत सारे भी भीषण हो गए।
अभी माने विशेष भीषण माने भयंकर, जो अपने परिवार की कुल की सारी बातें जानते हैं। जानने के बावजूद भी फिर राम के पक्ष में चले जाते हैं और राम को सारी वहाँ के रहस्य बता देते हैं रावण के घराने के। इसलिए विशेष भयंकर वो है जो घर की बात बाहर बता देता है। घर का भेदी
बाबा एक राम दर्शन का बेटा
अगर भक्ति मार्ग में बोलते हैं
एक राम गंडक में बैठा, एक राम है सकम मसाला और एक राम है जलसे।
वो भक्ति मार्ग ऐसे बोलते रहते हैं। राम तो एक ही है, चार चार थोड़े ही भक्ति मार्ग में उसको भटगट व्यापी कह दिया है। तो भटगट व्यापी तो होता नहीं। हाँ उसकी याद हरेक के दिल में समय रहती है। वो भी संगम में ही राम
पर्सनैलिटी एक ही है ना।
हाँ एक की चार बातें बना दी, एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है। उसमें निराकार भी है, वो साकार भी है, वो सारी दुनिया के दिल में रमण करता भी है और वो बीज भी है जिससे सारी दुनिया का पसारा फैल जाता है। जैसे बीज में से सारा विस्तार हो जाता है जड़ का।
बाबा वो ब्रह्मा से ब्रह्मा के संकल्प से चौथे बार सृष्टि रची, लक्ष्मी से पूरा काम हो गया बोले तो तीसरा राम कौन है?
तीसरा हो तो रहा है अभी।
वो नाम क्या
कौन है?
कौन है?
है तो एक ही, एक ही रूप तो है। ब्रह्मा के जो चार रूप बताए गए पहले तो एक ही की आदि वाला प्रजापिता एक रूप हो गया, फिर दोबारा सृष्टि रची गई दो रूप हो गए, फिर तीसरा रूप हुआ, अभी चौथा रूप आने वाला है।
इस वजह से शूटिंग जब
जो आदि का
पूरी आपके शूटिंग जब करते हैं पिक्चर्स की जब तक पूरी डायरेक्टर के तालमेल में नहीं बैठे तब तक होती रहती
है। हाँ
उसी तरीके से
ये भी हो रही है,
ये भी हो रही है।
वार्तालाप 42 में बाबा ने गणेश ब्रह्मा बाबा के लिए और हनुमान राम वाली आत्मा के लिए बोला है और बीसीडी 362 में गणेश और हनुमान दोनों ब्रह्मा बाबा के लिए बोले, इसका राज है।
गणेश हनुमान जानवरियत के अवतार है या मनुष्य अवतार है? तो जानवर है। माने ब्रह्मा की सूल ही जब तम प्रधान गर्भ प्रधान बनती है तो सीढ़ी में चित्र दिखाया गया हनुमान का। द्वापर की शुरुआत में थोड़ी हनुमान का चित्र है, हनुमान गणेश का जो पूजा है वो द्वापर में थोड़ी दिखाई जाती है। कब दिखाई जाती है? जब तम प्रधान बनते हैं तो उनकी पूजा दिखाई गई, विकारों की पूजा दिखाई गई हनुमान को। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र थोड़ा ही है सर, लेकिन वो उसमें प्रवेश करता है इसलिए दिखा दिया।
लेकिन अभी भी बोलते हैं ना बाबा हनुमान अभी भी इस मतलब साकार में है जितने भी मंदिर जाओ तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जैसे भक्ति मार्ग
कहते हैं, भक्ति मार्ग कहते हैं। वो यादगार कहाँ की कहते हैं?
संगम
युग में भी जब कलयुग की शूटिंग होती है तो सारी दुनिया में वो आग लगाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में आग लगती है ना, हनुमान की पूछ में विकारों की पूछ में, उसमें कौन से कपड़े बांधे जाते हैं? देह अभिमानी के कपड़े बांधे जाते हैं। कितने कपड़े बांधे जाते हैं? है रहा न बसन नगर घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान की वो रावण की लंका में न तो ज्ञान का तेल बचा और न वस्त्र बचे, सारे वस्त्र उसकी पूंछ में लपेट दिए गए और पूंछ लंबी होती गई। वो वस्त्र कौन से थे? देह अभिमान होता है, वो देह अभिमान के वस्त्र उसमें लपेट दिए गए और फिर उसमें काम विकार की आग लगा दी गई। फिर क्या हुआ? सारे ही कपड़े जल गए और लंका 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 सारी जल गई, गए निशाचर भाग। भक्ति मार्ग में कथाएं भेंट बनाई।
अब इसका बेहद में क्या अर्थ होगा कि वो जो पुल बनाया था राम ने रावण लंका में जाने के लिए, वो जो पुल बनाया
पत्थर बुद्धि तो थे, लेकिन ऐसे पत्थर बुद्धि थे जो पानी के ऊपर तैरते रहते थे। पत्थर तो थे लेकिन बहुत हल्के थे, ज्यादा भारी पत्थर नहीं थे। ज्ञान के कुछ कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि ऊपर तैरते रहते, हल्के पत्थर बुद्धि थे, ज्यादा पत्थर बुद्धि नहीं थे। पुल का पुल बनाया गया। सारे बंदर ऐसे नहीं थे, सिर्फ दो ही बंदर ऐसे थे, नल और नील।
अष्टदेवों में चंद्रवंश का बीज कौन जो जगदम्बा से भी श्रेष्ठ और विजयमाला की हेड से भी श्रेष्ठ होगा?
जो विजयमाला है वो सूर्यवंशियों की माला है कि ठेठ चंद्रवंशियों की माला है? चंद्रवंशियों की माला है। और जो अष्टदेव है वो ठेठ सूर्यवंशी है, तो ज्यादा ऊंचे कौन हुए? सूर्यवंशी ज्यादा ऊंचे हो गए। जो सूर्यवंशी ज्यादा ऊंचे हैं उनमें भी सूर्य को तो छोड़ दो, वो तो सूर्य है ही, लेकिन और धर्मों का फाउंडेशन लगाने वाला फाउंडर कौन है? पहला फाउंडर सूर्यवंशियों में जो आठ हैं मुखिया, उनमें पहला तो सूर्य है ही। उसके अलावा जो और धर्मों का फाउंडेशन लगाने वाला बीज है वो कौन सा है?
अष्टदेव।
और सूर्यवंशियों का दोनों का बाबा, चंद्रवंशियों का और सूर्यवंशियों का बाबा ही बीज है ना?
वो तो सारी दुनिया का बीज है, उसकी बात छोड़ दो। लेकिन खास करके जो चंद्रवंशियों का फाउंडेशन लगाता है, चाहे वो विजयमाला में चंद्रवंशी मुख्य हो छोटी मम्मा, और चाहे वो रुद्रमाला में कोई मणका होगा कि नहीं चंद्रवंशियों का बीज, वो कौन है?
जगदम्बा।
उसका भी फाउंडेशन, इसीलिए अद्वैतवाणी में बोला है अष्टदेवों से, इन्हीं एक दो वर्षों की वाणी के अंदर बोला है अद्वैतवाणी में कि तुम बच्चे हो दीदी दादियों को भी श्रृंगार करने वाले, तो फिर उनके भी फाउंडर हुए ना। आज में तुमने उनका श्रृंगार किया है तो आज में सो अंत में ज्ञान रत्न से श्रृंगार करेंगे। तो फिर उनका मम्मा का हरी मम्मी का श्रृंगार करने वाला कौन होगा? फिर सूर्यवंशियों में से होगा या कोई और वंशों में से होगा?
सूर्यवंशियों
होना चाहिए। क्यों ये क्या तपस्या हो रही है?
माता जी का वो इतने स्थान है,
कुर्सी रखी है, सरकार में आराम से बैठो। अपना तो सहज राज्य हो गया, कोई कठिन राज्य हो रही है?
राज्य तो हम समय
हाँ, लेकिन हड्डियों कभी नहीं किया जाता। अरे 2500 साल किया जाता है हड्डियों।
यहाँ पर आके बैठ।
और
महाकाल में कौन कौन सी आत्माओं का मिश्रण है?
महाकाल में कौन कौन सी आत्माओं का मिश्रण? महाकाल और महाकाली,
महाकाली
महाकाली है पुरुष, महाकाली है जगदम्बा।
जब महाकाल का पाठ बजाते हैं तो
असुर संहारिणी रूप स्त्री रूप गाया जाता है, ये असुर संहारी देवता गाया जाता है,
स्त्री
रूप गाया जाता है, असुर संहारी के रूप में जगत माता महाकाली का रूप धारण करती है, नहीं तो शंकर के ऊपर दोष आ जावे, दोष आ जावे तो फिर शंकर देवता बन रहा तो पापात्मा बन जाएगा। इसे शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से विनाश होता है, सिर्फ शक्तियां हैं तो क्या बिंदु की शक्तियां हैं? शक्तियां साकार हैं या निराकार हैं? साकार हैं तो किसकी शक्तियां? कोई शिव है जो निराकार स्टेज वाला है, उसकी शक्तियां हैं शिव शक्ति। अवतार ही अंत का नारा है, एक को लव करता है और किसी को लव करता ही नहीं, 500 करोड़ में से किसी को और किसी को अंदर से नहीं लव करता है, एक को लव करने वाला है, एक लव्य जो है एक को लव करने वाला है और किसी को लव करने वाला है ही नहीं, एक कौन है जिसको लव करता है? शिव बाबा, खुद ही शिव बाबा है, बाबा तो खाई जाता है निराकार साकार की मेल को। हाँ, एक शिव बाप हमारे लिए, एक शिव बाबा
एक लंबे हिंदी तभी तो बिलाई पड़ा था,
उसको अंदर रह करके पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती बेसिक नॉलेज। कौरवों ने एकलव्य को पढ़ाई नहीं पढ़ने दी,
स्वार्थी थे कि वो आगे निकल जाएगा तो अर्जुन कैसे
इसका अंगूठा कर दिया, गुरु ने अंगूठा कर दिया,
अंगूठा काट लिया मैंने आत्म किसी खलास
खलास कर। बाबा वो उसका क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग होगा कि जब एकलव्य ने वो श्वान वहां से जा रहा था उसके मुंह में एकदम बाण एकदम इतने सारे उनके उसको डिस्टर्ब कर रहा था तो इस खूब सारे बाण मारे पूरे मुंह में चले गए तो उस चीज का क्या मतलब है कि जो मुंह से बोलता हो उसको रोक दो?
इस्लामी है वो, मुसलमान है और उनसे पैदा हुए जितने क्रिश्चियन आदि हैं उसे ग्लानी बहुत करते हैं इसकी भगवान की,
भगवान की
बहुत ग्लानी करते हैं, बहुत भोगते हैं, कहते कुत्ते की तरह भोगता रहता है, कलम की तरह पिछाड़ी कुत्ते भोगते रहते हैं, तो जो ज्यादा भोगते हैं उनमें कोई कुत्ता होगा सबसे ज्यादा बड़ा भोगने वाला, उस कुत्ते की मुंह में इतने ज्ञान की बाण भर दिए उसका भोंकना बंद। तभी प्रत्यक्ष हो जाएगा।
अभी तो आपने जिस एक डिस्कशन में कहा कि अभी सबके चेहरे प्रत्यक्ष होंगे, सबके राक्षसी चेहरे और दैवी चेहरे प्रत्यक्ष होंगे और फिर चैतन्य मूर्तियां जब निकलेगी तो कन्याओं और माताओं से जो छोटी छोटी कन्या माताओं के सबको ज्ञान तो बड़े बड़े साधु संन्यासी भी हतप्रत रह जाएंगे। तो ये अभी ये गायन होने वाला है
जिम्मेवारी उठाई होगी ना, कृष्ण की आत्मा ने जिम्मेवारी उठाई होगी वो ध्यान देते
मतलब मुकुट को ध्यान देते मतलब उसकी
जिम्मेवारी जो कृष्ण ने उठाई वो राम की आत्मा ने नहीं उठाई होगी, भाग खड़ा होगा
तो भागवत में मतलब कृष्ण जब हम ज्यादा होगा एकदम जोर से मनाते हो राम को
नहीं मनाते कृष्ण के पीछे भागते हैं राम के पीछे भागते हैं पूछो स्वर्ग स्थापन होगा तो जो स्वर्ग की स्थापना करने में निमित्त बनने वाला कृष्ण है जो निमित्त बनने वाला कृष्ण है वो किधर स्वर्ग तो बाद में स्थापन होगा, पहले तो कृष्ण की गोपियां जो पुत्र पुरुषार्थ करने वाली है 16108 वो किधर जो कृष्ण पीछे भागती है
रहना चाहिए ना कृष्ण
कृष्ण भी होना चाहिए उसके पीछे भागने वाली गोपियां भी होनी चाहिए वो कहाँ
नहीं
हुआ है ही नहीं तो फिर तो बात ही झूठी हो जाती
है कई बार समझ में नहीं आता इतना क्लियर ज्ञान
और ज्ञान नदियां जो बताई है वो चैतन्य है या जड़ नदियां है वो चैतन्य नदी कहाँ है यमुना नदी यमुना नदी के किनारे कृष्ण को दिखाया है और राम को गंगा नदी के किनारे दिखाया है गंगा नदी के किनारे छोड़ा कहाँ है कृष्ण की यमुना नदी के किनारे वाला छोड़ा कहाँ है वो दोनों ये वो दोनों छोड़ा है कहाँ कृष्ण को भी तो छोड़ा दिखाते हैं
अचरे शब्दों को इतना जल्द स्पष्ट था इतनी प्रूफ सही थी फिर प्रयोग की समझ में क्यों नहीं आता बातों की बातें हैं कि वो हमारे खुल के नहीं लेकिन समझ में तो आना चाहिए
कि वो दूसरे प्रोफ में तरह तो खुल के नहीं है जंगल पर तक और हम दूसरे प्रोफ में तरह तो खुल के नहीं रहे हैं तो हमारे तो तीन पहले बैठे थे उनकी बुद्धि और पहले बैठे उनकी चेष्टा अपना अपना खून है कोई खून माँ को ज्यादा पकड़ता है कोई खून बाप को ज्यादा पकड़ता है क्यों वो जन्म का जो बातें बोलते हैं हमारे गुण का होगा झट से समझ जाऊंगा, झट से पकड़ लेगा। हमारे गुण का नहीं होगा तो रोज रोज उसको समझाते हो, उसमें देव बैठी वैसे के पीछे हम माथा क्यों मारे। ये तो अगर समझ भी जाएगा तो आगे चल के हमको तो हमको धोखा धोखा देखे चला जाएगा। जब उसे धोखा देके जाना ही है तो स्वर्ग की स्थापना में विघ्न बनेगा या स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी बनेगा? विघ्न बनेगा तो आ बैल की मुझे मार।
उन लोग तो बोलते हैं मुझे तो ऐसे तो लोग बिना मिलते ही चलेंगे नहीं के उनके मतलब चल रहे हैं वहाँ बेसिक नहीं हम चीज तो उनसे तो उनके जो भी होगा हमारा जो भी होगा नहीं होगा और कहीं ट्रांसफर नहीं होगा।
ट्रांसफर तो जरूर होगा, ऐसे
तो
है ही नहीं कि ट्रांसफर न हो।
उसका कारण यह है कि वहाँ मान मर्तबा ज्यादा देते हैं ना, और यहाँ तो भगवान का घर है
मिल रही है तो हम यहाँ छोड़ के वहाँ क्यों जाएंगे?
दुनिया में भी बाहर की दुनिया में भी कहते हैं हमारे स्वर्ग यही है, यही हमको सुख मिल रहा है तो हमें स्वर्ग में जाने की क्या दरकार है, हमें क्या पुरुषार्थ करने
की? मैं तो मुझे सुनाते थे लोग ऐसे ही बोलते हैं हमको यही सुख मिला फिर वहाँ इधर उधर जाने की क्या
दरकार। धीरे दर बनना धीरे
तो
माता
बाबा दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्वर्ग की स्थापना बताया तो चैतन्य में कौन है यमुना नदी? क्लियर नहीं।
चैतन्य में यमुना नदी कौन है
मतलब यमुना का यमुना कौन है?
तीनों नदियों में पहले जन्म किसका है? यमुना का, गंगा का या सरस्वती का? पहले कौन आती है? सूर्यपुत्री यमुना का जन्म पहले क्या? तो जो यमुना नदी है वो पहले पहले ज्ञान में आती है, आती है लेकिन तरीके से ज्ञान उठाती नहीं है, इसलिए विपरीत बुद्धि हो जाती है, कांटों के जंगल में चली जाती है, तो उसको कहते हैं काल की उल्सी। मणि बनते बनते रुक जाती है तो नाम पड़ जाता है रुकमणि, रुक अभी रुक
मणि बनते बनते रुक
गया। दूसरों को नंबर लेने दे।
कितना अच्छा मैंने कहना बाबा, मणि बनते बनते लोग रुक बनते बहुत जाओ जितना करो
क्राइस्ट की माँ को मिस कहते हैं कि मिसेज कहते हैं? मिस कहते हैं। तो ये जो विधर्मी होते हैं ना ये मिस से पैदा होते हैं। अकेली क्राइस्ट की बात नहीं है, क्रिश्चियन से पहले तो इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म आया, वो भी किसकी औलाद है? जिसकी औलाद है वो मिस कही जाती है, लेकिन वास्तव में मिस थी नहीं, इसलिए उनके धर्मशास्त्र का नाम ही पड़ता है कुराण। कुराण कैसी? कु माने खराब। भारतवर्ष में कोई राण विवाह भी बन जाता है तो उसको अच्छा समझा जाता है जो इधर उधर नजर न डाले, दोबारा शादी न करे तो उसको कहते हैं ये फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कहीं उल्टा रास्ता पकड़ लिया वीडियो होने के बाद फिर कहीं उल्टा रास्ता पकड़ लिया तो उसे क्या कहेंगे? कुरान। वो उनकी बाइबिल है, वो क्या नाम कुरान, उसी को फॉलो क्रिश्चियन ने किया है। कहते हैं क्राइस्ट का जन्म हुआ, किससे जन्म हुआ? वर्जिन से जन्म हुआ, वो शादी शुदा नहीं थी। अरे बाबा बाबा तो एक्सप्लेनेशन देते हैं, शादी माना क्या? ढोल मदिरा बजाने को शादी कहते हैं? शादी माना विकार में जाना माना शादी, और विकार में जाना वो तो कोई ढोल बजीरा बजा करके विकार में जाना थोड़ा ही होता है, वो तो चुप्पी चले जाते हैं। बच्चा पैदा हो गया वो उन्होंने प्रोपोगंडा कर दिया कि वर्जन से पैदा हुआ।
बाइबल में तो
यहाँ
था उसका जो
बाइबल की किताबें किसे लिखी
थी, जैकब था, जैकब था उसका, उनका तो ये जिक्र आता है, ये फिर क्यों कह देते हैं कि वर्जिन मैरी थी।
दो घंटा तो नहीं हुआ, डेढ़ घंटा हुआ।
क्रिसमस का अर्थ क्या कहेंगे?
क्रिसमस का अर्थ क्या कहेंगे? क्रिसमस आता है तो क्या लाता है? बच्चों के लिए क्या लाता है? खेल खिलौने लाता है। जो ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं उनका खेल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो है क्या किस बात में खुश हो जाते हैं, छोटे छोटे उनको खिलौने दे दो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो बेसिक नॉलेज में चलने वाले हैं तो छोटे छोटे खिलौने उनको मिल जाएंगे बाद में, किसी को 15 कला की जीवन मुक्ति, किसी को 14 कला की जीवन मुक्ति, कम कला की जीवन मुक्ति मिल जाएगी, सुख धाम शांति धाम मिल जाएगा, बस उसमें अपने खुश हो जाएंगे।
अब सेंटा क्लॉज जो ये बनाते हैं कहते हैं ये भी तो दोनों का मिक्सचर है, रेड और व्हाइट कपड़े पहनते हैं, रेड है परम धाम की निशानी और व्हाइट है हमारे अब जो हम जो ज्ञान का प्रकाश इसकी। ये जब दोनों आते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों को तोहफे ही तो देते हैं ज्ञान रत्न,
तो बच्चों को ही तो तोहफे,
बच्चों को तो तोहफे मिलेंगे ज्ञान रत्न।
सेंटा क्लॉज से किससे तोहफे मिलते हैं, बच्चों को या बड़ों को? बच्चे ज्ञान के बच्चे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को बेबी कहते हैं तो बेबी से पैदा होने वाले कौन होंगे, बेबी से पैदा होने वाली बेबी होंगे, उनको राजा ही तो मिल ना सके। राजा ही बड़ों को मिलती है, छोटों को मिलती है, बड़े हो जाते हैं उनको राजा मिलती है, छोटे 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 खिलौने से खुश हो जाते हैं।
बाबा जो बांदेली माता है वो सेवा करने पाते वाचा से सेवा नहीं कर पाते, तो माता से करते हैं लेकिन उनको
वाचा से क्यों नहीं सेवा कर सकते हैं? अपने घर में जो भी लोग हैं चिल्लाते हैं बिल्लाते हैं गाली देते हैं गुलानी करते हैं उनकी वाचा से सेवा करें खुश होकर के नहीं कर सकते, क्रोध क्यों आ जाता है, क्रोध आ जाता है सेवा नहीं हो पाएगी, सेवा तो कर सकते हैं ना, होते ही नहीं ये बात दूसरी है, नहीं करते।
तो जो मनसा सेवा करते हैं तो उसका रिजल्ट ही इस सामने नहीं आता,
वाचा सेवा ही वाचा सेवा स्थूल है या मनसा सेवा स्थूल है? वाचा सेवा, वाचा सेवा जब स्थूल सेवा ही नहीं कर पाएंगे तो मनसा सेवा तो और कठिन है। ज्यादा एकाग्रता की कौन सी सेवा में जरूरत है, मनसा सेवा में या वाचा सेवा में? अगर यहाँ तो वाचा में ही फेल हो गए तो मनसा सेवा का रिजल्ट कैसे निकलेगा?
वाचा
वाचा को कंट्रोल करें, जैसे घर में लड़ाई लड़ते हैं गिलानी करते हैं तो बाबा ने हमको मंत्र दिया हुआ है, क्या मंत्र दिया है? एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, कान होते हुए सुनते हुए भी ना सुनो, ये फालतू बातें बोल रहे हैं बोलने दो, जब रिजल्ट निकलेगा तो इनकी समझ में आ जाएगी बात कि हम सच्चे कि ये सच्चे, हम झूठे कि ये झूठे, फालतू बात बोल रहे हैं, फालतू बात में ध्यान क्यों देते हैं? लेकिन देह अभिमान है तो फालतू बातों के ऊपर ध्यान ज्यादा चला जाता है,
सिद्ध करने लग जाता
है, अपने को सिद्ध करने लग जाते हैं, लड़ाई लड़ना शुरू, जिद करना शुरू।
अमृत वेले बाबा बैठकर याद करना اور چلتے پھرتے یاد کرنا اور یہ کام کرتے ہوئے یاد کرنا، ان میں انٹینسٹی کوالٹی کا فرق رہتا ہے.
جن کو دیکھیں کہ لیٹے لیٹے نیند آتی ہے اور بار بار نیند آ رہی ہے، روز ایسا ہی ہو رہا ہے، مانے اتنی لگن پکی نہیں ہے کہ لیٹے لیٹے بھی جیسے آنسو ماسو کی یاد ہوتی ہے ایسی یاد نہیں ٹکتی ہے، تو پھر بیٹھ کے یاد کریں. بیٹھ کے بھی جھٹکا آتا ہے، سو جاتے ہیں، گردن لٹک جاتی ہے، تو چلتے پھرتے یاد کریں.
آرام سے بیٹھ کے یاد کر سکتا تھا،
کر سکتے ہیں، روز دیکھیں، چیکنگ کریں کہ آرام سے بیٹھنے میں کہیں آرام بھی تو نہیں آ جاتا ہے پورا.
دیکھیے بابا، یہ تو کبھی اوستھا ہو جاتی ہے نا، کئی بار لیٹے لیٹے بھی اتنی اچھا امرت ویلا ہوتا ہے، ایسا بڑھیا ہوتا ہے کہ جو بیٹھ کے بھی نہیں ہوتا، چلتے پھرتے بھی نہیں ہوتا.
تو اس ٹائم آپ بیٹھے بیٹھے جو یاد کر رہے ہیں، چلتے پھرتے بھی اچھی ہوگی. پور جنوں کا کوئی اچھا شکر تو ادے ہو جاتا ہے، یاد اچھی آتی ہے. کوئی دشٹ کرم ادے ہو جاتا ہے ڈراما کی ریل میں، کتنے پریاس کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، یاد آتی نہیں.
جیسے صبح امرت ویلے سیر کرنے جاتے ہیں، مطلب ایک دم اکیلے راستے میں، اس وقت یاد بہت اچھی ہوتی ہے، کام اٹماسفیئر بہت بالکل بہت اچھی، واک کرتے ہوئے پتہ نہیں لگتا کتنے کلو میٹر چلے گئے، مطلب دھیان ہو رہے، اس وقت یاد بہت اچھی آتی.
جیسے چلتے سمے بھٹتے سمے سب انڈیاں الرٹ ہو جاتی ہیں نا،
اور جب کئی کو گھر میں بیٹھو تھوڑی دیر، پہلے شروع شروع آدھا گھنٹہ تو اچھا یاد نہ، مطلب خوب لگے، بعد میں اندریا جواب دینا شروع ہوتا ہے، پھر چلنے لگ جاؤ تو پھر اچھا لگتا ہے، مطلب ہے کہ یاد جو ہے، میرا کہنے کا مطلب ہے جو لگن ہے، جو کوالٹی کی یاد ہے، کس روپ میں ہونی چاہیے؟
کوئی بھی روپ ہو، کوئی بھی اوستھا ہو، کوئی بھی سمے ہو، اچھی ہو. ایسا نہیں کہ سنگٹھن ہے تو اچھی یاد آ رہی ہے، اچھے اچھے لوگ مل گئے تو اچھی یاد آ رہی ہے، سوجن مل گئے تو اچھی یاد آ رہی ہے، درجن مل گئے تو آج یاد خراب ہو رہی ہے.
بابا کن اچھے کو کہے گی یا برے
کو؟ کن پہلے پیدا ہوتا ہے یا بعد میں پیدا ہوتا ہے؟ جو پہلے پیدا ہوتا ہے سو اسر ہوتے ہیں، جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں سو دیوتا ہوتے ہیں.
لیکن وہ اتنا دانوی،
ایک دم لاسٹ میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اسر ہوتے ہیں. چھوٹا سب سے
دیکھیے بابا، یہ بھی تو کہتے ہیں کہ چھوٹے بڑوں سے سیکھ کے زیادہ چتر بن جاتے ہیں،
بھی بار بار
لیکن بڑے تو بہت سمے کے
بھولے رہتے ہیں.
نہیں، وہ جو اوستھا ہوتی ہے پیورٹی کی سٹیج کافی دھارن کرتے ہیں، تو بڑوں میں مطلب وہ آ جاتا ہے، وسا بھی ان کو خیر ملتا ہے، لیکن چھوٹے تو ان سے بھی زیادہ تیز رہتے ہیں. بڑے تو بڑے
بڑے میاں، سبحان اللہ، بڑے میاں،
چھوٹے میاں تو
سبحان
اللہ،
بڑے تو بڑے میاں، چھوٹے بھی سبحان اللہ، وہ چترائی میں ہو جاتے ہیں.
جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو ماں باپ کا ایکسٹرا پیار ملتا ہے، اس لیے بگڑ جاتا ہے.
کئی دفعہ پیار جو ہے اس کی تلن کو ابھارتا بھی ہے، کئی دفعہ تلن کو خراب بھی کرتا ہے.
جتنا لگاؤ پوروک جو کام ہوگا وہ بگاڑے گا. پیار اچھی چیز ہے، लेकिन लगाव पूर्वक होता है वो बिगाड़ देता है,
वो उसमें डिपेंडेंट हो जाता
है। हाँ
बात आधी रह गई थी, उसे नहीं क्वेश्चन रह गया, मतलब परिस्थिति के अधीन में याद नहीं होनी चाहिए आप पहले काम लाए, कोई अच्छी
काम कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समय हो, याद अच्छी रहे,
अच्छी रहनी चाहिए कैसी भी परिस्थिति,
बल्कि परिस्थिति खराब हो, व्यक्तियों का संग खराब हो, समय नाजुक हो,
और तेज कर देना,
फिर भी याद की अवस्था को और तेज करना,
ये लगाना होने चाहिए।
बाबा अमृत वेला की याद सबसे अच्छी होती है, ऐसा तो हर समय लेकिन अमृत वेला याद सबसे अच्छी होती है,
करके देखिए कोई कोई का कोई अमृत वेला स्पेशल स्पेशल ध्यान दे करके बैठिए कि आज हमें बैठना ही बैठना है, हर हालत में अच्छा से अच्छी याद करके चार्ट बनाना है, फिर सारे दिन अवस्था देखिए कैसी होती है। अमृत वेला फाउंडेशन वेला, मकान का फाउंडेशन अच्छा होगा तो उसके ऊपर कितनी भी मंजिलें चढ़ा दो, भूकंप आएगा हिलेगा नहीं, और फाउंडेशन कच्चा है, नीचे रेत भरा हुआ है, ऊपर से बिल्डिंग खड़ी कर दी दो तीन मार दी, थोड़ा सा हिलेगा गिर जाएगा।
और जब ये एम लेके चलते हैं, जैसे अमृत वेले याद किया उसका, फिर नेक्स्ट डे याद किया तो कंपेयर करते हैं कि कल से आज मेरी बेटर याद है, तीसरे दिन और अच्छी याद है, तो ऐसे ध्यान देने से इम्प्रूवमेंट नजर आती है, लेकिन अगर उस तरफ ध्यान नहीं दें तो फिर वो स्टैग्नेंट वहीं स्टैग्नेंट हो जाती है, आगे जात मतलब बढ़ती नहीं, यही तरीका है कि कंपेयर करते हुए पोता मिल करते करते आगे बढ़ते, उसमें अच्छा लगता है।